पूर्वी बोली का कवि कबीर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। कबीर के काव्य पर विचार करने से पूर्व इस बात पर विचार कर लेना जरूरी है कि कबीर के कवि रूप को लेकर हिंदी आलोचना का रूप क्या रहा है। कबीर कवि हैं भी या नहीं? हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण धारा एवं कबीर की शब्द साधना पर बातचीत करते हुए उन्हें कवि मानने से साफ तौर पर इनकार करते हैं। कबीर पर उनके विचार कुछ इस तरह से हैं। नोट कामा, कबीर प्रतिभावान हैं लेकिन कवि नहीं हैं। वे अद्भुत रूपक बांधते हैं लेकिन ये रूपक भावलोक में नहीं ले जाते, जनता के बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। उन्होंने प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ती हुई जनता के एक बड़े भाग को संभाला। उनका शब्द विधान हृदय को शुद्ध और प्रेममय करता है लेकिन वह कविता नहीं है, उपदेश है। उन्हें शत्रु की भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव जगाया। भावना का यह प्रवाह कविता नहीं है, भावनात्मक रहस्यवाद है। स्पष्ट है कि शुक्ल जी कबीर की रचनाओं की अर्थवत्ता को ठीक ठीक समझ रहे थे। रही बात उनको कवि के रूप में मान्यता देने की, तो वे अपनी पूर्व निर्धारित कसौटियों के चलते उन्हें यह सम्मान नहीं दे पाते। कबीर के अभिव्यक्ति पक्ष पर शुक्ल जी का मत देखिए। उनके मुख से बड़ी चुटिली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों का विन्यास विरोध और असंभव चमत्कार लोगों को आकर्षित करता था। रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा वाक वैचित्र अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। शुक्ल जी का एक दूसरे संत सुंदरदास पर विचार देखना दिलचस्प होगा। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। इन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और वे काव्य कला के रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अतः उनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रजभाषा है। सिद्धस्थ कवियों के समान उन्होंने कवित्त और सवैये रचे। इन कवित्त सवैयों में यमक अनुप्रास और अर्थालंकार की योजना मिलती है। इनकी रचना काव्य प्रसिद्धि पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। शुक्ल जी सहमति बनाते हुए अपनी असहमति के आधार भी स्पष्ट करते चलते हैं। आप चाहें तो उनकी असहमतियों से असहमत होते हुए नए निकष दे सकते हैं। बातचीत का उनका तरीका लोकतांत्रिक है। मैं सहमत हूँ तो क्यों, असहमत हूँ तो क्यों। संत होने के साथ कवि होने के लिए छंद अलंकार का ज्ञान हो, पढ़े लिखे हों और स्वभाव कोमल एवं मृदुल हो, काव्य कला की रीति आदि से परिचित हो, इन अर्थों में कबीर कवि होना भी नहीं चाहते। शायद इसीलिए उन्होंने कहा है, जिन यह जानो गीत है। कविता की जो कसौटियां हैं वह कबीर को स्वीकार नहीं, इन प्रचलित अर्थों में वे कवि नहीं हैं। शुक्ल जी साफ कहते हैं कि बातें नहीं हैं, मैं कहूं कि सौंदर्याभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन वे सौंदर्याभिव्यक्ति को पुराने ढर्रे पर ही चाहते हैं। छंद नहीं है, अलंकार नहीं है, काव्य रीति नहीं है। शुक्ल जी के लिए इसका अर्थ है कि आप कवि नहीं हैं। कबीर की रचना संसार में गोता लगाने वाले दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक हैं आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि से अलग दृष्टि अपनाई। वे अपने विश्लेषण के क्रम में कबीर की उक्तियों में कविता देखते हैं, किंतु अपनी पुस्तक कबीर के उपसंहार में चौंकाने वाली पंक्ति लिखते हैं। नोट कामा, कबीर धर्म गुरु थे, इसलिए उनकी कविताओं का आध्यात्मिक रस भी आस्वाद्य होना चाहिए। काव्य के रूप में उसे आस्वादन करने की प्रथा ही चल पड़ी है। नोट कामा बंद, कवि रूप घलुए में मिली हुई वस्तु है। चौंकाने वाली बात तो द्विवेदी जी यह कहते हुए करते हैं कि उनकी छंद योजना उक्ति वैचित्र और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अयत्न साधित है। रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथन के जरिए अकथ्य का ध्वनन, काव्य शक्ति का चरम निदर्शन नहीं तो क्या है? फिर भी वह ध्वनित वस्तु ही प्रधान है, ध्वनित करने की शैली और सामग्री नहीं। इस प्रकार काव्यत्व उनके पदों में फोकट का माल है, बाय प्रोडक्ट है। वह कोलतार और शीरे की भांति और चीजों को बनाते बनाते अपने आप बन गया है। द्विवेदी जी संशय में है। कबीर का व्यक्तित्व, भाषा पर उनका अधिकार, अकथ्य को ध्वनित करने की उनकी क्षमता, सामाजिक मसलों पर उनकी विवाक टिप्पणी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो द्विवेदी जी के आलोचकीय विवेक को यह कहने के लिए मजबूर करती हैं कि यह काव्यत्व नहीं तो क्या है। ये एक सामान्य पाठक भी समझता है कि अगर बात में वजन नहीं होगा तो उसके कहने का ढंग चाहे जितना निराला हो उसकी नोटिस नहीं ली जाएगी। द्विवेदी जी का मानना है कि जो ध्वनित है उसमें कविता का कच्चा माल नहीं है, वह सब भक्ति का विषय है। ध्वनित करने की शैली और सामग्री कविता के दायरे में आती है लेकिन फोकट का माल बनकर नहीं। द्विवेदी जी शुक्ल जी से थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं लेकिन उनके कवि रूप पर बुनियादी नजरिए शुक्ल जी और द्विवेदी जी में कोई फर्क नहीं है। शुक्ल जी अपने मत में स्पष्ट हैं कि कबीर संत हैं, कवि नहीं। द्विवेदी जी के लिए वे भक्त हैं लेकिन ध्वनित करने की शैली और सामग्री में वह कविता मौजूद है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या संवेदना के स्तर पर कबीर में कवि होने लायक बातें मौजूद नहीं हैं? कबीर की शब्द संरचना का संकलन करते हुए ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे पोयम ही कहा है, 100 poems of Kabir। टैगोर के कबीर की शब्द साधना कविता लगती है। कबीर की कविता स्वीकृत अर्थों में कविता नहीं है, वह कविता के स्वीकृत ढांचे के बाहर है। स्वीकृत पैमाने से नाप जोक करने वाले लोग कबीर के काव्य का ठीक ठाक मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह भिन्न सौंदर्याभिरुचि की कविता है जो कविता के बद्धमूल कोबल संस्कारों के विपरीत है। सच्ची कविता भी वही है जिसके लिए पुराने प्रतिमान छोटे पड़ जाएं और कविता बड़ी हो जाए। आज कविता को देखने परखने की कसौटी कुछ इस प्रकार की, वह जिंदगी के निकट हो, जटिल यथार्थ को अभिव्यक्त कर सके, ईमानदारी और अनुभूति की प्रामाणिकता हो, सच्चाई साहस और संघर्षशील चेतना हो। कबीर की कविता आज की इन कसौटियों पर खरी उतरती है। जग अंधा रे जग धंधा सब लोग न जाने अंधा, लोभ मोह जेवड़ी लपटाणी बिन ही गांठ रहे ओ फंदा। हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता दुह मैं कदय न जाय। कबीर आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाए, स्वयं मुए धन संचते सो उभरे जे खाई। आहे मेरे ठाकुर तुम्हारा जोर, काजी कवि बकिबो हस्ती तोर, भूजा बांधी भिला करी डरियो, हस्ती कोपी मुंड मोही मरियो, भाग्यो हस्ती चीसा मारो, या मूर्ति की हो बलिहारी। सोई आखर सोई बैन जन जू जुआ चुम्मत, कोई एक मेले लवनी अमीर साइन हंत। कबीर इस छंद में सामान्य वाणी का कविता की वाणी के रूप में रूपांतरित होने की कसौटी बता रहे हैं। वही वाणी और वही अक्षर प्रत्येक व्यक्ति अनुभूत करता है, किंतु अक्षर और वाणी में बोध और विवेक का लावण्य मिला देने पर वह कविता हो जाती है। अनुभूति की प्रामाणिकता के दृष्टि से कबीर की पंक्ति देखी जा सकती है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कवि के दृष्टा और साक्षी होने की कसौटी साखी आंख ज्ञान की है। अनुभूत की गहराई किसी कवि की कसौटी मानी जा सकती है। अनुभूत के स्तर पर कबीर सामाजिक कुरूतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक योद्धा की तरह हैं। इस पूरे संसार को प्रेम के क्षेत्र में परिवर्तित कर देने वाले सहृदय की तरह यह कहते हैं, कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे हाथी करे सो पैसे घर माए। कबीर की शब्द योजना उत्कृष्ट है। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना जुन खाइयो पिया मिलन की आस। ऐसी शब्द योजना में अगर किसी को कविता नहीं दिखती तो यह कवि की नहीं उस दृष्टि का दोष है। दरअसल कबीर का महत्व ही इस बात को लेकर है कि मध्यकाल में शोषण के सबसे बड़े तंत्र के खिलाफ लड़ाई के लिए उन्होंने कविता को हथियार बनाया था। उनके शब्द विधान का राग और छंद से लिपट कर आना प्रतिरोध की संस्कृति को कविता के जमीन से आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। इस नई संवेदना के संप्रेषण तंत्र पर विचार करते हुए उनकी भाषा, उनके छंद विधान, उनके कहने की शैली को देखना दिलचस्प होगा। भाषा के स्तर पर संस्कृत भाषा को चुनौती देते हुए सचेत रूप से भाषा के पक्षधरता जन प्रतिरोध को जनता के जुबान में रखने की प्रतिबद्धता के रूप में भी देखा जा सकता है। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, अपनी बोली के संदर्भ में कवि का यह कहना, कबीर का यह कहना बोली हमारी पूरबी हमें लखे न कोय, हमको तो सोई लखाए जो धुर पूरब का हो। कबीर भाषा की नहीं बोली की बात करते हैं, अर्थात भाषा कोई भी हो, कबीर की बोली, उसकी स्पीच, उसका ताप धुर पूरब का है। भाषा कोई भी हो सकती है, अवधि, भोजपुरी, राजस्थानी, मगधी, लेकिन उसकी स्पीच या बोली धुर पूरब की ही होगी। उनकी बोली का संबंध पूरब की चिंतन धारा, साधना, कहने की तरतीब एवं तरकीब से है। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोली जाएगी तो वह हिंग्लिश हो जाएगी, अमेरिका में बोली जाएगी तो अमेरिकन हिंग्लिश हो जाएगी, बलिया में बोली जाएगी तो उसका भोजपुरी रंग होगा, पंजाबी की हिंदी की रंगत पंजाबी होगी। दरअसल भाषा बोली का कलेवर है। कबीर शायद यही कहना चाहते हैं कि मेरी बोली अर्थात उसका अंत अनुता पदबंध मुहावरे पूरब के हैं, इसे धुर पूरब का आदमी समझता है। पश्चिम के आदमी के लिए वह शब्दार्थ बन कहियत भिन्न न भिन्न, संकुल है, गिरा और अरथ है। पूरब के लिए सीधे शब्दार्थ के आर और पार समझने की चीज है और शब्दार्थ की गति में नहीं, बोध और विवेक में संप्रेषित है। कहने की जो पूर्वी शैली है उसमें अनेक तरह के रचनात्मक और मिथकीय धारणाओं के लिए पूर्वा हवा से जुड़ा हुआ धरती आकाश है। वाद्य, संगीत, लय, ताल और सुर की भूमि के रूप में पूरब की अपनी पहचान है। उसी मधुर संगीतात्मकता की विरासत के साथ कबीर शब्द लेकर आते हैं, इसे बिना संगीत के पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। कबीर को गाकर कहने की परंपरा सिद्धों से शुरू होती है। कबीर भी उसी परंपरा में है जिन्होंने अपने वक्तव्य के क्षतिपूरक तत्व के रूप में संगीत का प्रयोग किया है। तमाम रागों में पाई जाने वाली उनकी कविताएं अकारण नहीं हैं, बल्कि वे उनकी कविता को अर्थ देती हैं। शुक्ल जी कबीर की भाषा को शुद्धुक्कड़ी कहते हैं। अगर यह व्यंग्य एवं चुटकी लेने की मुद्रा नहीं है तो कबीर की भाषा के संदर्भ में इसे महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में लिया जाना चाहिए। अपनी लंबी यात्राओं के क्रम में नाथों ने जनता से संवाद की जो एक भाषा विकसित की थी, उसी भाषाई प्रवाह में कबीर भी हैं। सद्धुक्कड़ी अर्थात साधु एवं संतों के द्वारा बनाई गई भाषा। कबीर के भाषाई प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि यह तत्कालीन सांस्कृतिक विमर्श की भाषा है, जिसमें शब्दों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है, सिवाय इसके कि वह आमजन की बोल सीमा के भीतर हो। संवाद एवं संप्रेषण को सहज बनाने के लिए एक कवि की जितनी तैयारियां हो सकती हैं, कबीर सहज ही उन सबके साथ अपनी शब्द संरचना में दिखाई पड़ते हैं। यह वाक्य संरचना एवं शब्द संग्रह की दृष्टि से नहीं, बल्कि साहित्यिक रूपों की दृष्टि से भी साखी, शब्द, दोहरा, चाचर, बिरहुली, विप्रमतीसा जैसे लोक प्रचलित काव्य रूपों को भी अपने संप्रेषण का माध्यम बनाया है। कबीर की अभिव्यंजना का नयापन उनके अपस्तुतों के चयन में भी देखा जा सकता है। अपनी कविता का ढांचा खड़ा करने के लिए उन्होंने शास्त्र और परंपरा से नितांत भिन्न अप्रस्तुतों का चयन किया है। लोक जीवन के प्रतीक उनके पदों में भरे पड़े हैं, जैसे करघा, अरहट, शराब, खींचने की भट्टी आदि। इसके साथ नितांत नए संबंधों का बोध कराने वाले अप्रस्तुत भी मौजूद हैं। कबीर भाटी कलाल की पौतक बैठे आए, सिर सौंपए सोई पीवए, नहीं तो पिया न जाए। कबीर अपनी अभिव्यंजना को प्रभावशाली बनाने के लिए उलटवासी शैली का प्रयोग करते हैं। उनकी उलटवासियों के अभिप्राय को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। दरअसल उलटवासियां कुल मिलाकर कहने की एक शैली है। इस शैली में प्रतीकों के सहारे उनके प्रचलित अर्थ को उपस्थित करते हुए श्रोता को अपनी ओर मुखरित करने की कोशिश होती है। ठाणा सिंह चरावे गाई, यह पंक्ति प्रचलित अर्थों में असंभव जैसी दिखती है। इसके प्रभाव पर बात करें तो प्रथम दृष्टया अपने बेतुकीपन से चौंकाती है।